दिल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
शांति। एक धार्मिक व्यक्ति एक बार विमान से यात्रा कर रहा था और जो अपनी सीट पर बैठा तो है एयर होस्टेस आई और वो एक थाली में कुछ पेय पदार्थ ड्रिंक्स लेकर उसको देने लगी तो उसने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं इसे पीता नहीं हूं। उसे लगा कि शायद उस एयर होस्टेस को लगा कि शायद मेरे देने के तरीके में कुछ गलती हो। वो फिर गई और फिर थाली को थोड़ा और सजाया और फिर लेके आई, ये आपके लिए है। तो कहता है नहीं मैं नहीं लूँगा। वो फिर गई, फिर उसे लगा कि शायद मेरी नम्रता में थोड़ी कमी है तो फिर अच्छे से उसको सजाती है और बहुत सलीके से तरीके से कहते हैं कि आपके लिए मैं लाई हूँ। वो कहता है मेरा धर्म इजाजत नहीं देता कि मैं ये पीऊँ, इसके लिए मैं इसे नहीं पीऊँगा। उसे बहुत बुरा लगता है। वो जाती है और अपने मैनेजर से कहती है, फिर मैनेजर कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ। तो वो थाली लेकर जाता है और कहता है कि ये आपके लिए, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये हमारी तरफ से, हमारी ये सेवा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो धार्मिक व्यक्ति देखता है, कहता है आप एक काम करो, पहले ये जो ड्रिंक है ना, ये अल्कोहल, ये दारू, आपका जो पायलट है ना उसको पिला दो। तो वो कहता है उसको उसको कैसे पिलाया जा सकता, अगर वो ये पी ले फिर तो उसे बेहोशी हो जाएगी, एंड ही इज ऑन ड्यूटी, और वो तो ड्यूटी पे है। ये व्यक्ति कहता है मैं भी ड्यूटी पर हूं और मेरा धर्म कहता है कि निरंतर जागृत, निरंतर होश में रहना है। अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे साथ असंख्य आत्माएं जुड़ी हुई है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, तुम एक एक सितारे को फॉलो करने वाले हजारों है, अगर तुम भटक गए तो सारी दुनिया भटक जाएंगी तुम्हारे पीछे। इसके लिए तुम्हें क्या रहना है, निरंतर जागृत, सतत जागरण। आरंभ है प्रचंड, यह आरंभ कैसा है, प्रचंड, क्योंकि हमारी युद्ध है, भयंकर युद्ध है। जिस युद्ध को हमने छेड़ा है, बहुत भीषण युद्ध है वो। कल की मुरली और आज की मुरली, दोनों मुरलियों में एक वाक्य आया है, ये तुम्हारी रावण के साथ युद्ध है, ये युद्ध बड़ी गुप्त है, कल था आज भी कहा है युद्ध है। एक दूसरी अव्यक्तवाणी है 74 की, जिसमें बाबा ने कहा है तुम एक एक रूहानी योद्धा हो, युद्ध स्थल पर हो, माया को तुमको हराना है। इन पांच भूतों ने सबके कैरेक्टर बिगाड़ दिए है, आज की साकार मुरली सबके कैरेक्टर बिगाड़ दिए। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो अपने आप को महावीर समझते हैं, वो भी क्या, वो भी माया भी उनको खा जाती है। कल भी कहा था नाक में दम और आज भी कहा नाक में दम। कल कहा था माया ने नाक में दम कर दिया, आज कहा इस रावण राज्य में तुम्हारा नाक में दम हो गया था। तो हमारा शत्रु जो है बहुत खतरनाक है, और शत्रु इतना खतरनाक है, इतना शक्तिशाली है कि जब युद्ध की रणभेरी बजती है, ये जो गीत है दिनकर कवि थे, कवि, उन्होंने कभी कोई रोमांटिक पोएम ऐसी कभी नहीं लिखी। वो जो लिखते थे उसमें विद्रोह होता था, प्रतिशोध होता था, आग थी आग, और ये राजपूतों की कहानी है। जब युद्ध होता था तो जो कवि लोग होते थे वो उनके लिए ऐसे गीत गाते थे, ऐसे गीत गाते थे कि जोश आ जाए, खून गर्म करने वाले, गर्मी लाने वाले, ठंडी से उठाने वाले। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। राजपूत जाते थे तो ये सारा गीत गाए जाते थे, और यदि वो मर जाते थे तो उनकी पत्नियां जौहर, और उस जौहर के बाद में एक दूसरी प्रथा थी कि जो बचे हुए पुरुष है वो उन स्त्रियों की जो राख है वो राख को लगाते थे, गंगा जल, तुलसी मुख में, और दूसरे दिन फिर से लड़ने के लिए निकल जाते थे जितने बचे हुए। जैसे कि चित्तौड़ में हुआ था, वो 8,000 लोग जो बचे थे उन्होंने 40,000 अकबर की सेना को मार दिया, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा जौहर हो गया था। वो सारी स्त्रियां मर चुकी थी, अब बस एक ही लक्ष्य था, उनको मारना है या खुद मरना है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और हमारा जो युद्ध है वो हिंसक युद्ध नहीं है, वो बहुत गुप्त युद्ध है, अदृश्य युद्ध है, क्योंकि हमारा शत्रु भी अदृश्य है। आन बान शान या की जान की का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, अपने अंदर फिर से वो जोश, फिर से वो गर्मी, क्योंकि शत्रु ने हमें कई बार पराजित किया है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो, फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो? जैसे वॉरियर को धुन लगनी रहती है कि विजय प्राप्त करनी है, क्या ऐसी मायाजित बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है? आग क्या चाहिए? आग चाहिए। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिवान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। वीर तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक युद्ध के मैदान में नहीं जाते और जीत के नहीं आते, और हमारी तो निरंतर युद्ध है। वी आर एट वॉर विथ माया। हमारी युद्ध पांच विकारों से है, हमारी युद्ध बहुत पांच पुराने ठगों से, पांच पुराने शत्रुओं से है, और जो बहुत शक्तिशाली है। आज की मुरली में उसमें से काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन काम है, जिसने कई बार हराया है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की अनीड़ हो, जो लड़ सका वो ही तो महान है। जो लड़ ही नहीं सकता, जो कायर है, जो भाग जाता है, और इसमें से कितने भाग गए, आज है ही नहीं, कहां चले गए पता नहीं। तो यहां कायर नहीं बनना है। हमारी लड़ाई अकेले की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जिसमें हम अकेले ही है। इस लड़ाई में हमारे साथ कोई नहीं भगवान के अतिरिक्त, और ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, क्योंकि ये विकार हर दिन नए नए रूप प्रकट करते हैं, हर दिन नए नए रूपों में आते हैं। तो चाहे कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। ऐसा जीवन क्या किस काम का जिसमें जीत की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई अभीप्सा, कोई हवस, द लस्ट फॉर विक्ट्री नहीं है। किसी पे कोई वश नहीं, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्या डरे। ये जाके आसमां में दहाड़ दो। कौन सी दहाड़ करनी है आसमां में, कि हमें किसी से भी भय नहीं। अव्यक्त वाणी है बाबा के, अगर बाप की याद में सिर कट भी जाए तो उच्च पद पाओगे। माँ बाप कहते हैं बाबा, माँ बाप कहते हैं शादी करो, बाप कहते हैं पवित्रता के इस मार्ग में यदि सिर कट भी जाए तो भी क्या कहें, उच्च पद पाओगे। एक मुरली में बाबा ने कहा है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, मार खाते समय बुद्धि में ये सोचो, शिव बाबा, मार खाते समय बुद्धि में ये सोचो डैश शिव बाबा। अत्याचार होंगे, बहुत अत्याचार होंगे, तो क्या करें, भाग जाए? नहीं, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्या डरे। ये जाके आसमां में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव। अब यहां पर मृदु रूप, प्रेममय रूप प्रकट नहीं करना है विकारों के सामने। बाबा ने कहा है, श्रीमत विरुद्ध अगर किसी को सुख दिया वो पाप के खाते में जाएगा। किसी से इतना मोह बढ़ा दिया, इतना मोह बढ़ा दिया है, अब उससे प्रेम से मोह को नहीं छूटा जा सकता, उसके विकराल रूप धारण करना पड़ेगा। महाकाली का रूप धारण करना पड़ने का, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, क्या चुनना है, दया या शौर्य? शत्रु पर दया कर दे और छोड़ दो, क्या करेगा वो? फिर आ जाएगा आधी रात को और आक्रमण करेगा। या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो, और वो हार का जो घाव होता है बहुत गहरा होता है। हार हो गई तो उठ नहीं पाती आत्मा, एक बार पवित्रता में जिसकी एक बार हार हो गई, कितना समय लगता है वापस उसी लेवल के पुरुषार्थ में आने के लिए, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आत्मग्लानी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां कूट कूट कर दिमाग में भरा हुआ है कि एक का सौ गुना, एक का सौ गुना, एक का सौ गुना, निकल ही नहीं पाती उससे। या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पे जला रहा है विजय का लाल, लाल यह गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। केसरी निशानी है राजपूतों की, केसरी पहनते हैं। जिस कवि की कल्पना हुई हो जिंदगी हो प्रेम गीत, अब उस कवि को क्या करना है, अंदर एक बहुत सेंसिटिव संवेदनशील हृदय बैठा है, पर यहां तो ऐसा नहीं चलेगा, यहां निर्दयी निष्ठुर कठोर पाषाण हृदय, किसी पर भी दया नहीं दिखाना। ये सारे जो शत्रु है, एक एक शत्रु से लड़ाई, एक एक संस्कार से लड़ाई है हमारी। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, शक्ति सेना का मुख्य लॉ क्या है, इस यज्ञ की शायद सबसे छोटी मुरली, सबसे छोटी मुरली। 30 जून 74, शक्ति सेना का मुख्य लॉ क्या है, इस शक्ति सेना का मुख्य लॉ, इतनी मुरली है बस। क्या लॉ है? ना अपनी देह को देखना, ना किसी और की देह को देखना, यह इस शक्ति सेना का मुख्य लॉ है। अगर किया तो हार हो जाएगी। ना हमारी अपनी देह को हमें खुद देखना है, ना किसी और की देह को देखना, भगवान के महावाक्य 74 में उच्चारण किए हुए। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। बघार, छोक, किसका छोक लगाना है, आग की लपटों का। कवि का हृदय नहीं चलेगा यहां पर। तो हमें क्या बनना है, रूहानी योद्धा बनना है। ये इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत भीषण लड़ाई है, शत्रु बहुत शक्तिशाली है, जरा सी भी लापरवाही हुई तो गए। आज भी कहा है, जरा भी, हमेशा खबरदार रहना है, निरंतर अटेंशन, हम निरंतर ड्यूटी पर है। एक मिनट के लिए भी अगर बेहोश हो गए, बस उसी बेहोशी में माया आक्रमण कर देती है। 10 मिनट बेहोश हो गए 24 घंटे में, उस 10 मिनट में ही माया आ जाती है, उस 10 मिनट में ही ब्रह्मचर्य भंग होता है, और उसका पश्चाताप 10 दिन नहीं 10 महीने चलेगा। इसके लिए क्या बनना है, रूहानी योद्धा बनना है, और रूहानी योद्धा बन करके माया को परास्त करना है। तो आज हम देखेंगे, ये जो रूहानी योद्धा है, इसमें ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी बातें उसके साथ रहनी चाहिए, ताकि वो जब युद्ध में जाए तो जीत जाए, मौत की उसे कोई परवाह नहीं। आसमां में जाके तुम दहाड़ दो कि मौत की भी हमें कोई परवाह नहीं। सबसे पहली बात जो एक रूहानी योद्धा में होनी चाहिए, साहस। क्या चाहिए? साहस, हौसला, करेज। ये मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, यहां तो लड़ना होता है, आखिरी दम तक लड़ना है, मरते मरते भी एक दो को मार के ही मरना है। एक एक ने दस को मारा, गीत है ना, ए मेरे वतन के लोगों, मरने से पहले मार के जाना है। तो योद्धा अर्थात जिसमें क्या है, साहस, अदम्य साहस है, भरा है। और ये मार्ग ऐसा है कि इसमें कई लोग एक बार अगर हार हो जाए तो साहस खो बैठते हैं, क्योंकि शत्रु बहुत शक्तिशाली है, एडिक्शन बन चुका है वो। विकार क्या है, एडिक्शन है, इतनी बार उसमें डूबे हैं और उसको उससे गुजरे हैं कि वो खींचता है ये शरीर, पागल कर देता है, विक्षिप्त कर देता है देह। इसलिए इसमें बहुत साहस की आवश्यकता है, इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चलते रहने के लिए, बिना कोई प्रलोभन के आकर्षित हुए चलते ही जाना, चलते ही जाना, चलते ही जाना। जो जितना नष्ट मोह है वो उतना अधिक शक्तिशाली है। जिसने अपने सारे मोह अंदर से भस्म कर दिए, जरा भी छुपा के रखा है एक दो मोह, तो एक दिन वही खींच लेंगे, वही पकड़ लेंगे। इसके लिए बहुत 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 सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है कि सारे मोह विराग हो जाए, राग सारे विराग बन जाए। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है साहस को धारण करना है, रोज अमृत वेला शक्ति से भरना है आत्मा को, अशरीरी होकर परम धाम में स्थित हो जाना, और वो सर्वशक्तिमान ऊपर मैं नीचे, उसकी सारी सूक्ष्म शक्तियां मुझ में आ रही है, शक्तियों से भरना है, स्पिरिचुअल पावर से आत्मा को भरपूर करना है। आज का है बैटरी फुल करो। बैटरी फुल कैसे होगी आज की साकार मुरली, याद से। बैटरी को फुल करना है, बैटरी डिस्चार्ज होते ही आकर्षण चालू हो जाते हैं, और जब बैटरी फुल रहती है तो एक बाबा के अतिरिक्त इस संसार का कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं करता, ना ही उनके कोई शब्द, उनकी स्तुति, उनकी निंदा, उनकी ग्लानी कुछ आकर्षित नहीं करता, व्यर्थ सा लगता है सब कुछ। पर जब थोड़ा नीचे है तो प्रभावित होती है, किसी ने तारीफ कर दी, तुम बहुत ही अच्छे हो, और मैं क्या क्या हूं, और कोई ग्लानी कर दे तो बहुत फील होता है, एकदम से हर्ट होता है, ऐसा लगता है इसने, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसने ऐसा कहा, आखिर मेरी कौन सी बात के कारण इसने ऐसे कहा, पूछ भी नहीं सकते जाके, पर बुरा लगता है, हर्ट होते हैं। तो ये सब लोअर स्टेजेस है, इधर दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार प्रभावित कर रहा है। इस मुरली में और एक बात बाबा ने कही है 74 की, यही योद्धा वाली मुरली, बाबा ने कहा है, महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी, मुरली का हेडिंग है। अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है, सेवा बहुत कर ली, अब क्या मिलेगा तुमको, सफलता मिलेगी और महिमा होगी चारों तरफ, तब क्या करना है, इसी समय अगर यह फल स्वरूप स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न कर सकोगे। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ कैसा हो, निराधार, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतना ही वह शक्ति बढ़ती नहीं, योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाता है, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की करनी चाहिए, उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करेंगे। पुरुषार्थ कैसा हो, निराधार। पुरुषार्थ कैसा हो, किसी पर भी अवलंबित नहीं। पुरुषार्थ कैसा हो, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। जब जब डिपेंडेंस है वहां दुख है, परावलंब, पैरासिटिक पुरुषार्थ नहीं करना है, पैरासाइट जैसा। तो सबसे पहली चीज चाहिए साहस, अदम्य साहस भरना है अपने अंदर। हजार बार गिरेंगे परंतु फिर भी उठ के खड़े होना है, क्योंकि भगवान ने कहा है सफलता तुम्हारे गले का हार है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम सफल नहीं होंगे तो कौन सफल होगा? आज की भी मुरली में सफलता तुम्हारी होनी है, विजय तुम्हारी ही होगी, विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हें कारून का खजाना मिला है आज का, कल कहा था तुम्हें कापारी खुशी हुई है, विजय तुम्हारी है, भूलना नहीं। माया कितनी बार भी हरा दिया हो परंतु फिर भी अंततः विजय हमारी है, इसलिए हारना ही नहीं है। गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो, उठते जाना है, ये चलना है और संभलना है, और गिरना है और संभलना है, संभलो और फिर गिरो, फिर उठो और फिर आगे बढ़ो, थकना नहीं है इस मार्ग में। क्योंकि माया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जीती होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार जीतो, कई बार हार होगी ब्राह्मण जीवन में, और शायद यह भी हो सकता है ज्यादा हार ही हो रही है, और जीत तो बहुत ही, जीत के मौके तो बहुत ही गिने चुने, जीत तो हुई नहीं है, हर बार माया नहीं हराया है। अब आरंभ करना है प्रचंड, प्रचंड अर्थात भीषण, फियर्स, फियर्स बिगिनिंग, फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना। और जैसे वो फ्रांस स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस, कितनी बार उसको इंग्लैंड ने हरा दिया, बार बार इंग्लैंड आक्रमण करता था, बेचारे स्कॉटलैंड को हरा देता था, वो कितना दुखी हो गया राजा, भाग जाता था हर बार, और एक बार तो सोच रहा था अब जीवन को खत्म कर दूं, गुफा में जाके बैठ गया, देखा एक मकड़ी चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, गिरती है, वो सोचता है अब मैं देखता हूं ये कितनी बार गिरती है, 6 बार गिरती है, और कहता है कि अगर ये इस बार सफल हुई तो मैं फिर से आक्रमण करूंगा एक बार, और इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दूंगा, लास्ट टाइम। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, फिर से शक्ति आ जाती है उसमें, और फिर से आक्रमण करता है और इस बार जीत जाता है। ये नहीं देखा जाता कितनी सेना है, वो जब जौहर हुआ चित्तौड़ का, 8,000 सैनिकों ने 40,000 लोगों को मार गिरा दिया, कहां से पावर आ गई इतनी? क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला थी, अब बदला लेना था, मरेंगे, अब शरीर की चिंता ही नहीं थी, मर गए तो चलेगा। वैसे हमारा माया से भीषण युद्ध है, मर भी गए इस युद्ध में चलेगा, ऊंच पद तो पाना बिल्कुल निश्चित है, भगवान ने कह दिया है। दूसरा, शक्तिशाली योद्धा कैसा होना चाहिए? बहुत पावरफुल होना चाहिए, इसका अपने अंदर सूक्ष्म शक्तियां भरनी है रोज। आज की मुरली में शक्तियां, तुम शक्तियां भरने की विधि क्या है? वरदान आज का, खजाने हैं उसको देते जाओ तो भरते जाएंगे, याद के अनुभव सुनाओ तो और अनुभव होते रहेंगे, अपने अंदर शक्ति भरनी है, दूसरों को देते जाओ इधर भरते जाएंगे खजाने, सारे खजाने। तो ये शक्तियां मनसा से सारे विश्व में देते रहना है, तो अपने आप आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और ये पावरफुल कोई बाहुबल नहीं है, या किसी कुश्ती में किसी को दंगल में किसी को पछाड़ दो, वो वाला बाहुबल नहीं है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत आंतरिक जीत है, इंट्रेंसिक विक्ट्री। ये जीत होने के बाद हमें अपने आप ही खुशी होती है, ये किसी को दिखाने की बात नहीं है, हमें अपने आप ही खुशी होती। एक आदत है किसी व्यक्ति की, रोज एक गलती करता है, रोज कुछ ना कुछ गलत करता है, आज संकल्प करता है कि नहीं करूंगा, अपने आप वो करने के बाद उसे खुशी होती है। रोज उसकी आदत है ये खा लेता है, उसको पता है ये मुझे नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जिस दिन नहीं खाता है फिर उसको खुशी होती है जीत की। तो ये किसी ने देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, ये तो आंतरिक खुशी है, तो पावरफुल। तीसरा, रूहानी योद्धा का क्वालिफिकेशन है आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट। जो भी उसके ऊपर के रहते हैं आर्मी में, मिलिट्री में, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई, ये रूल है आर्मी का। ये मत पूछो क्या क्यों कहा, ये मत पूछो दाए क्यों कहा, बाए क्यों कहा, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, विश्राम, सावधान। कोई कहता है क्या अभी विश्राम क्यों कहा, मैं तो सावधान ही रहूंगा। डिसोबीडियंस है, आर्मी का रूल है जो कुछ बॉस ने कह दिया वो करना है। हमारा सुप्रीम कमांडर स्वयं भगवान है, उसका जो भी आदेश है, उसकी जो भी श्रीमत है, बस वो फाइनल वर्ड है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। उसकी श्रीमत है ज्ञान सागर में डूबे रहो, अव्यक्त महावाक्य बाबा के 1991 की मुरली। ज्ञान सरोवर में रहने वाले होली हंसों की स्थिति बताओ कैसी होगी, व्यर्थ या समर्थ। ज्ञान सरोवर मतलब यह वाला नहीं, ज्ञान सरोवर में रहने वाले होली हंसों की स्थिति बताओ, बाप पूछते हैं कैसी होनी चाहिए, व्यर्थ या समर्थ। समर्थ होनी चाहिए, पर रहता कहां है, होली ज्ञान सरोवर में रहना है। खूब विचार सागर मंथन करते रहो, कल भी कहा था, सोचते रहो। मनुष्य मत पर बहुत चल लिए, कैसी है मनुष्य मत, कल की मुरली। मनुष्य मत कैसी है, सड़ी हुई, सड़ी हुई मनुष्य मत पर बहुत चल लिए, अब श्रीमत पर चलना है। तो तीसरा गुण क्या होना चाहिए, ओबीडियंट। अगला प्रैक्टिस, निरंतर रूहानी ड्रिल करते रहना। यहां आर्मी ने, आर्मी सीआरपीएफ एयरफोर्स है माउंट में, ड्रिल करते रहते हैं, बंदूक ऊपर लेके भागते रहते हैं सुबह सुबह। युद्ध कहीं हो नहीं रहा है, क्यों करते हैं, कभी भी हो सकता है, तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस निरंतर होती रहे। कौन सी प्रैक्टिस करनी है, यहां पर शरीर से डिटैच होने की। हम रूहानी योद्धा है, हमारी एक ही प्रैक्टिस है, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना। शरीर खींचे ना, ना हमारा अपना, ना किसी और का, और की तो बात दूर, हमारा अपना ही ना खींचे। निरंतर सतत अभ्यास, ये रूहानी योद्धा का लक्षण है। सारे दिन भर अभ्यास, कोई ना कोई अभ्यास हो, चाहे मुरली को पॉइंट्स याद करने की कोशिश कर रहे, या उन पॉइंट का रूप, पॉइंट स्वरूप बन के स्थित हो रहे, कुछ भी, कुछ ना कुछ अभ्यास हो, वो हर चीज होती रहेगी जिससे हम शरीर भान से ऊपर रहे। वो हर स्थिति जो हमें देह से ऊपर रखता है वो फरिश्ता स्थिति है। इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस, याद करने की, मुरली पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने की, सुनाने की, चिंतन करने की, मनन करने की, डिस्कस करने की। ये नहीं किया तो सहज व्यर्थ आ जाता है, सहज बुद्धि पास्ट में चली जाती है या भविष्य की चिंताओं में घुस जाती है, वर्तमान में नहीं रहेगी। अगला, उसके अस्त्र शस्त्र, नेक्स्ट पॉइंट, अस्त्र शस्त्र उसके साथ होने चाहिए। और योद्धा के अस्त्र शस्त्र क्या है, ज्ञान। आज की मुरली में अगर तुम्हें गुस्सा न चाहिए तो क्या करो, गुस्सा क्या करो, जानो कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कोई भी भूल नहीं है, ये ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अगर हमको लगता है ड्रामा में भूल है तो शायद हमने ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं किया है, इसलिए फिर गुस्सा आता है। वो हमारी कमजोरी है, हम वशीभूत हो रहे हैं, भूल हमारी भूल है, वो ड्रामा एक्यूरेट है। वो भूल होना भी ड्रामा में नूंद है, वो दूसरी बात है, पर ड्रामा ओवरऑल एक्यूरेट है। और ड्रामा शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है, ड्रामा शब्द केवल पास्ट के लिए प्रयोग के लिए लाना है, जो बीत गया है बस उसी के समय ड्रामा संदर्भ में प्रयोग करना है, बाकी कहीं और ड्रामा का प्रयोग नहीं करना है। ड्रामा हम क्रिएट करते हैं, हम क्रिएटर है ड्रामा के, हम डिसाइड करेंगे ड्रामा में क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर कोई कहे ड्रामा में होगा ये, तो बाबा ने कई बार कहा है ना, हम डिसाइड, और ड्रामा पास्ट के लिए केवल, जो हो गया, अब जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है, दूध गिर गया है क्या करें, दूध को बर्तन में कैसे लाए, जो यहां किसको सब कुछ मिल रहा है किसी को सब कुछ नहीं मिल रहा है, ये ड्रामा फिर भी एक्यूरेट है। कहा जाता है ये चार चीजें जब एक साथ किसी को मिल जाती है वो बहुत अच्छा होता है। एक, दौलत, किसी किसी पे दौलत होती है, खूबसूरती, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, किस्मत और जहानत, जहानत अर्थात बुद्धिमान भी होते हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, पैसा भी बहुत है, किस्मत भी है और बहुत बुद्धिमान भी है, चारों चीजें एक साथ एक जगह मिल जाए बहुत रेयर है, पर होता है कहीं कहीं। और कहीं कहीं जो गरीब होंगे ना तो दिखने में सुंदर है, बदसूरत, वो सोचते रहते देखो ये अमीर लोग सब इनका अच्छा है, हमारी देखो फूटी किस्मत, काली किस्मत, कुछ भी नहीं, ढंग का नहीं है। तो रूहानी योद्धा अर्थात क्या करे वो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहे, निरंतर प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद में चतुर होना चाहिए वो, श्रीउड। रूहानी योद्धा कैसा हो, योद्धा हमेशा कैसा होता है, सब समझता है, उसको बहुत चाले समझ में आती है शत्रु की, कूटनीति का प्रयोग कर सके वो शत्रु, क्योंकि बहुत शातिर है। इंटेलिजेंस कहो या चतुर कहो या श्रीउड कहो या चालाक कहो, सब चाहिए, क्योंकि शेर के सामने सवार शेर तो बनना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु अलग अलग रूप धारण करता है। बेचारी सीता को क्या पता था कि ये जो ब्राह्मण आया है ये रावण है। अब अगली बार वो सोचेगी कि ठीक है अभी ब्राह्मण बन के जो आया ना मैं उसको उसके झांसे में नहीं आऊंगी, पर वो रावण कुछ और ही बन के आएगा अगली बार। जरूरी नहीं है कि एक बार तो ब्राह्मण बना, अगली बार कुछ और बनेगा, चौथी बार और कुछ बनेगा। हर बार सीता को धोखा हो रहा है, हर बार सोचती है कि हाँ अभी इस बार अगर वो रूप में आए ना मैं उसको बिल्कुल जाऊंगी नहीं उससे बाहर, पर वो दूसरे रूप में आ गया तो बहुत चतुर सुजान, चतुर सुजान के बच्चे हो राजू रमजबाज, सब राज को तुम जानने वाले हो, इसके लिए चतुराई से काम करना है। उसके बाद में वो देश प्रेमी होना चाहिए। योद्धा कैसा होता है, देश प्रेमी, अपने देश के लिए मर मिटने की उसकी भावना होती है, सब कुछ करूंगा ये देश के लिए। देव देश अनधर्मा साठी प्राण घेत लहाती, शूर हमी सरधारा माला काय कुणाची भीती। गीत है, हमको किसी की किसी का भय नहीं, हम शूर सरदार है। देव देश अनिधर्मा साठी, भगवान के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए प्राण घेत लहाती, अपने हथेली पर प्राण लिए है, जान न्योछावर कर देंगे। तो योद्धा कैसा हो, देश प्रेमी। तो हमें भी क्या होना है, देश प्रेमी। बाप भारत में आते हैं और दूसरा हमारा देश वो है जहां हमको जाना है, हम उसके भी प्रेमी हैं। उसके बाद में ड्रेस, योद्धा हमेशा किस में होता है, ड्रेस में होता है। हमारी कौन सी ड्रेस है, स्वमान की ड्रेस, स्वमान की ड्रेस पहन के रहना है, भिन्न भिन्न नए नए स्वमान सारे दिन भर। जैसे आज की मुरली में है, रावण के प्यार ने तुमको क्या बना दिया, बाप के प्यार ने क्या बना दिया और रावण के प्यार ने क्या बना दिया, रावण के प्यार ने तुम्हें क्या बना दिया, बंदर। मुरलियों से पॉइंट्स निकालनी है, सोचना है और उससे नए सामान क्रिएट करने, और ये ड्रेस दिन भर पहन के रहनी है, नए नए सामान, नए नए ड्रेस निरंतर पहनते रहना है। तो ये युद्ध का मैदान है, आज के महावाक्य है, रावण को जीतने का युद्ध का ये मैदान है। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सामान निकालो उसमें से। हम योद्धा है, युद्ध के मैदान में तैनात है और हमारी लड़ाई है। लड़ाई के समय कोई सोता है, कोई रेस्ट करता है, नहीं, बहुत जोश में होते हैं। गीत ही ऐसे ऐसे, कोई प्रेम कहानियां सुनता है कि युद्ध के मैदान में, वो जो कवि है जो प्रेम कहानियां गाता है उसको नकार दो, हटा दो उसको वहां से, बहुत गाली है रोमांटिक स्टोरीज और गीत और सब कुछ। अब युद्ध का समय है तो समान धारण करने हैं, तो ड्रेस। उसके बाद में एवर रेडी, योद्धा कैसा हो, एवर रेडी हो, निरंतर वो रेडी है। रात में सोता है और अचानक आवाज आता है, सबसे पहले क्या करता है, आंख खुलने से भी पहले क्या करता है, तलवार, बंदूक, पहला हाथ कहां जाता है? बंदूक। उसी तरह हम अगर सो भी जाए और परिस्थिति आ जाए तो पहला हाथ ड्रामा के ऊपर जाना चाहिए, कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये जो सीन आया इसमें भी कल्याण है। पहला हाथ ड्रामा पर, ये जो सीन आया इसमें सभी निर्दोष है, ये जो सीन आया इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये जो सीन आया ये सत्य है, ये जो सीन आया इसको मैं स्वीकार करता हूं। पहला हाथ ज्ञान के बंदूक पर जाना चाहिए। एवर रेडी। उसके बाद में एंथुजियाज्म, बहुत उमंग उत्साह रहना चाहिए योद्धा में। योद्धा ही गमगीन, दुख में डूबा हुआ है, मजनू बना है, कैसे युद्ध करेगा? मजनू युद्ध मजनूओं के लिए थोड़ी होता है। युद्ध में तो ललकार दहाड़ करनी होती है, शत्रु को हराना होता है, मरने मारने की बातें चलती है वहां पर, प्रेम कहानियां नहीं। तो क्या भरना है अपने अंदर? उत्साह भरना है, उमंग भरना है, जीत को विजुलाइज करना। यह भी कितना अच्छा अभ्यास है, देखते रहना। उसके बाद में अगला बैच मिलिट्री होता है ना, वो कितना गर्व होता है उनको, इधर चार इधर चार ऐसे रहते हैं, चलते कैसे ऐसे एकदम अलर्ट रहते हैं। ओपीडी में आते हैं हमारे पास बहुत सारे, तो वो ये दवाई एक बार ले लाना सर, ये दो बार ले सर, हम फिर बोलना ही बंद कर देते, पूरा लिखते थे ले लो हर बात में सर हर सर, और जाते समय एकदम ऐसे डिसिप्लिन होता है उनका, हर चीज में एकदम ऑफिशियली बिहेव करते, एकदम ऐसे जाते समय तो बिल्कुल देखने ही होता है, ऐसा अलर्ट होते फिर जाते योद्धा अर्थात बैच लगाओ। कौन सा बैच लगाना है? ये बैच तुम्हारा शास्त्र है बाबा ने कहा, ये क्या बैच ही तुम्हारी गीता है, शस्त्र है तुम्हारा, शास्त्र भी है तुम्हारा, डरना नहीं है बैच लगाने से। कोई लोग ना दुनिया में छोटा बैच लगाते हैं, तो ये बटन पर शर्म आती है, ताकि कोई कहे दोनों तरफ तोड़ नहीं पाते, दोनों तरफ तोड़, कोई अगर कहते अरे तू बैच ये क्या ब्रह्मा कुमारी में रहते, कहां ब्रह्मा कुमारी, तो ऐसी है हमको कुछ पता नहीं, और कोई कहेंगे बीके मिल गया, अरे तुम्हारा बैच ये क्या है, बाबा ने बोला है क्या बड़ा लगा, ये दिखता नहीं है क्या, हमको शो ऑफ थोड़ी करना है, हम गुप्त बीके है, गुप्त पुरुषार्थ, दोनों तरफ तोड़ने बात है। जैसे एक साकार पुरली में बाबा ने कहा, यदि घर गृहस्थ में रहते हो और शादी में जाना पड़ता है तो साक्षी होकर शादी में जाओ, साक्षी होकर वहां की रीति रस्म कर लो और अंदर से बाबा को याद करते रहो, तोड़ तो निभाना है ना, फुल स्टॉप, साकार महावाक्य। नहीं कल नहीं था, बहुत पहले था, 2006, बहुत पुराना, बहुत पुरानी मुरली है। तो ये सब करो तो बैच लगा हुआ हो। तो योद्धा की निशानी बैच। उसके बाद में योद्धा जो होगा वो इंस्पिरेशन होगा, दूसरों को इंस्पायर करने वाला होगा, दूसरा को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, प्रेरणा स्रोत। वो खुद भी प्रेरणा स्रोत वही बन सकते हैं जो खुद ही उमंग उत्साह में भरे हैं, तो ही भर सकते हैं, खुद ही अंदर इतनी प्रेरणाएं हैं तो ही तो प्रेरणा दे सकते हैं। हिटलर ऐसा भाषण करता था, ऐसा भाषण करता था, बेचारे जर्मनी के लोग एकदम उमंग उत्साह में आ जाते थे यहूदियों के विरुद्ध। वो कहता था इनको हटा दो यहूदियों की, इनके वजह से हम कमजोर बने। हिटलर का वीडियो देखना कैसा है भाषण करते हो। उसी तरह जब सिकंदर भारत में आया, उसकी सेना थक रही थी, बार बार कहती थी अभी हमको घर जाना है, हमको अपनी परिवार की याद आ रही है। वो हर बार उनको उमंग गुस्सा में इतना भर देता था उनमें कि वो कहते थे नहीं नहीं हम अब और आगे जाएंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। जीत का नशा, जीत की खुशी, विजय, विजय का नशा हो। तो योद्धा अर्थात वो कैसा हो? प्रेरणा स्रोत हो, दूसरों को प्रेरणा देने वाला हो। कितने हो गए? और कुछ? अब आप बताओ। वफादार, रॉयल, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है उसने, और लक्ष्य निरंतर उसकी बुद्धि में रहे कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। भारत की एक बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है योद्धाओं की, जिन्होंने कैसे भारत को जिताया अलग अलग युद्धों में, चाहे कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी कारगिल, अलग अलग युद्धों में उनको कैसे कैसे परमवीर चक्र मिले, उनकी जीवन गाथा अगर पढ़ो तो बलिदान किया है उन्होंने। और एक बात, योद्धा अर्थात त्यागी और बलिदानी, त्याग करता है वो, बलिदान करता है अपने सारे सुखों का, अपनी अपनी छोटी मोटी जो उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं सबका त्याग करके न्यौछावर करता है स्वयं को, कहां पर, देश के लिए, देश के इसके लिए सर्वप्रथम होता है उसके लिए। वैसे हमारी जो लड़ाई है इसमें भी त्याग चाहिए, इसमें भी बलिदान चाहिए, इसमें भी जो छोटी छोटी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, क्या दिया हमको इन्होंने, सुख दिया अल्पकाल का, बस सेंशुअल प्लेजर, क्या मिला इससे, भौतिक सुखों से, शरीर के सुखों से थोड़ा सा सुख मिला बस, और तो कुछ मिला नहीं, बदले में इतना बड़ा दुख, बड़ा बड़ी 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 चीज हमको चाहिए तो बड़ा त्याग चाहिए। तो फिर से क्या करना है, क्या करना है, आरंभ कैसे करना है, प्रचंड आरंभ करना है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिवान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध करना है, युद्ध युद्ध करना चालू करना है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दे, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डरे, ये जो ये जाके आसमां पे दहाड़ दो। प्रचंड आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव अब नहीं चलेगा, मोह को जीतना है तो विकराल रूप धारण करना पड़ेगा, सबसे मोह खत्म, जिसको जो होना है होने दो, दुखी होना है होने दो, उदास होना है होने दो, मरना है मरने दो, निराश होना है होने दो, नाराज होना है होने दो, ये मार्ग अकेले का मार्ग है, यहां किसी को पकड़ के थोड़ी चलना है। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव हो, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल बे जला रहा विजय का लाल, लाल यह गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, क्या करो उसको, उस कवि को आज तुम नकार दो, भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बगार दो। आरंभ है प्रचंड। ओम शांति।
घड़ी की तुम गुहार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। I'm gonna have my